ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतविदयम् तवैवास्मि न जीवामि त्वामिना तं नयमां शरणं भजे। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पार्षि श्रीमद भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार श्रद्धा दंडवत करने की ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात दंडी पादवन ब्रह्मचारी गण उपस्थित सज्जन मंडली मातृपिंड बेटी हम लोग शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं इसको अन्नाभिलाषिता श्लोक की व्याख्या में बतलाया। उसी प्रसंग में सनातन धर्म क्या है संक्षेप में इसको बतला रहा हूं। जो कुछ हम अभी कर्ण और आश्रम के धर्म के नाम पर कर रहे हैं सब कुछ सनातन धर्म नहीं है। एक सनातन के प्रति दूसरे सनातन के धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। माता पिता सनातन नहीं है, पत्नी सनातन नहीं है, पति भी सनातन नहीं है, समाज भी सनातन नहीं है, इसलिए इनके प्रति किया हुआ धर्म सनातन धर्म नहीं है। भागवत में कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ प्रशांत जनमित्रा मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, वे सनातन है, नित्य है, जो ब्रजवासियों के मित्र हैं, बंधु हैं, सखा हैं, प्रियतम हैं, बेटे हैं, किंतु हैं पर ब्रह्म सनातन। एक ये सनातन, दूसरा सनातन ममई वांसो, कृष्ण कह रहे हैं ममई वांसो जीव भूत सनातन। जीव भगवान का नित्य सनातन अंश है, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा के प्रति जो परस्पर का धर्म होता है, प्रेम होता है, ये सनातन। इसलिए सनातन धर्म नाम लेकर के कुछ कार्य पर भी यानी सनातन वस्तु से संबंधित वह धर्म नहीं है तो वह सनातन धर्म नहीं होगा। कृष्ण राम सनातन है, हनुमान जी शंकर जी गोप गोपियां ये सनातन है, प्रहलाद महाराज जी सनातन है, उनका सनातन पर ब्रह्म में भक्ति। ध्रुव भी सनातन कृष्ण के प्रति किया, किंतु थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लौकिक स्वार्थ के कारण। इसलिए जितने हमने बतलाया है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमात्म भक्त, और गोपियां का चरित्र हमने बतलाया, यह सनातन धर्म के अंतर्गत। विशेष करके परब्रह्म के प्रति जब साधक जीवों का अथवा सिद्ध जीवों का ममता पूर्ण संबंध पूर्ण ममता युक्त प्रीति हो, वो सनातन धर्म का उच्च सोपान है, सीढ़ी है। अम्बरीश महाराज इत्यादि का जो चरित्र दिखलाया गया है, ये सनातन धर्म है। उनसे भी बढ़कर हनुमान का, उनसे भी बढ़कर उद्धव इत्यादि का, और उससे भी बढ़कर के नंद जसोदा इत्यादि ब्रजवासियों का ममता युक्त है। इसलिए ममता युक्त होकर के कृष्ण के प्रति भक्ति करे, यह सनातन। किंतु सनातन धर्म के भी स्तर हैं। अभी तक हम लोगों ने इनको बतलाया जिनको ये साधक हैं, और हनुमान से लेकर ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी लोग, नंद बाबा, ये सब सनातन के उच्च सिद्ध ये परिकर है। जिसमें जितना ही मिलन में ममता होगी, जिनके मिलन में बहुत आनंद है, ममता है, उसके बिछुड़ने में भी, उसके विरह में उतना ही दुख है। सनक्ष नंदन सनातन और प्रहलाद महाराज इत्यादि भीष्म देव जो ज्ञानी भक्त हैं, इनको भगवान से बिछुड़ने का कोई शोक नहीं होता। हनुमान को होगा, और ब्रजवासी जितना कृष्ण को प्यार करते हैं, नंद बाबा से लेकर गोप गोपियां, पशु पक्षी कीट पतंग, उनको विरह में उतना ही दुख होता है। कृष्ण विशेष काम के लिए कंस इत्यादि को दंड देने के लिए मथुरा आए, प्रतिज्ञा की आज मैं कल परसों आऊंगा, किंतु कल परसों बरसों हो गया, ब्रज में नहीं लौटे। अच्छा, ब्रज में नहीं लौटे तो जिस काम को के लिए गए थे, जिस कारण से मथुरा गए, वह कारण पूरा हो जाने के बाद में अंत में ब्रज में तो आना चाहिए, अपने घर में लौट आना चाहिए। नहीं, कभी कभी तो लौटते, कभी नहीं। फिर यदि नहीं लौटे तो ब्रजवासियों को मथुरा या द्वारका में ही बुला लेते, ऐसा भी नहीं किया, नहीं बुला सकते, वो आनंद किरकिरा हो जाएगा, उन्हें बुलाते भी नहीं। क्या, क्यों, इसके भीतर में क्या रहस्य है, यही भागवत है, यही गोपियों का विरह और मिलन है, इसी में श्रीमद् भागवत का सब कुछ सार छिपा हुआ है। कृष्ण मथुरा आए, कंस को मारा, चारण मुष्टक इत्यादि सबको मारे, गुरु गृह में गए, सामदीपनी मुनि के यहाँ 64 दिनों में 64 कलाएं की 60 कलाएं 64 64 कलाओं की शिक्षा की। परब्रह्म में शिक्षा करना क्या है, गुरु को सम्मान देना है और पद्धति को ठीक रखना है, परंपरा को सीख करके आए। वृंदावन और मथुरा दूर नहीं है, 1 इंच की भी दूरी नहीं, दोनों का बॉर्डर मिला हुआ है, किंतु मन की दूरी बहुत है, भावों की दूरी बहुत अधिक है, बहुत। कृष्ण भावों की इतनी दूरी है, कृष्ण अपनी मधुर बंसी को, मोर मुकुट को नहीं ले जा सकते मथुरा द्वारका, नहीं नहीं जा सकते, अपनी बंसी मोर मुकुट सब रख दिया मैया के पास ब्रज में ही रख दिया, नहीं। और एक बात और विशेष है, जहां पर ब्रज में नंदनंदन यशोदानंदन है, राधा कांत है, मथुरा द्वारका जाने में ये परिचय लुप्त हो जाता है, अपने को नंद नंदन नहीं कहेंगे, यशोदा नंदन नहीं कहेंगे, गोपी बल्लभ राधा कांत नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, और मुरली नहीं बजा सकते, रास नहीं कर सकते, बहुत दूरी है भाव में। इसलिए जब कृष्ण पढ़ लिख करके आए तो वृंदावन की तरफ में देखा, उजाड़ देखा अपने विरह में, तड़पते हुए नंद बाबा यशोदा मैया की भावना की, खुद रोने लगे। उद्धव जी वहां पर पधारे, भवन के छत पर कृष्ण रो रहे थे, उद्धव आते ही उनके हाथों में हाथों को धारण करके कहने लगे, उद्धव ब्रजम गच्छ, ब्रज में जाओ और मेरे विरहातु माता पिता को सांत्वना दो, और वो गोपियां जो मेरे विरह में कातर हो रही हैं, जिनका मैं प्राण हूं, जो हमारे प्राण स्वरूप हैं, जो हमारे लिए ही जीवित हैं, उनका मन अपने में नहीं है, मेरे अंदर में है, इसलिए जीवित हैं, तो मर गई होती, उन गोपियों को मेरे संदेश सुना करके सांत्वना देना, अपनी बात कोई मत कहना। उन्होंने तरह तरह के सांत्वना वाक्य दिए और कहा इन्हीं से ही उनको सांत्वना देना, अपने बुद्धि बल से कोई प्रयत्न मत करना, नहीं तो और विरह में व्यतीत हो जाएंगे। इस तरह से उनको कंस का जो सोने का रथ था, जिस रथ पर अक्रूर गया और कृष्ण बलदेव को ले आया था, वहीं उसी रथ पर गए। उसमें कृष्ण स्वयं कह रहे हैं गोपियों की महिमा, और थकते नहीं है, आघाते नहीं है, गोपियां कितनी महान हैं कि गोपियां उनको अपनी महानता के लिए कृष्ण को चोर लंपट धोत शर्ट सब कुछ कहती हैं, और कृष्ण के कान खड़े रहते हैं जे कब गोपियां ऐसी बातें कहें उसको सुनने के लिए। यद्यपि मैं इसके विषय में दो एक कथा पहले बतला चुका हूं, अभी दिल्ली में भी बतलाया, यहां पर भी नए नए लोग हैं इसलिए बतला रहा हूं, गीता का अंतिम उपदेश है मनमना भव, मद भक्तो मदयाजी मांग नमस्कुरु मामेव यश्यसि प्रतिजाने प्रियोऽसि। अर्जुन तुम हमारा प्रिय है इसलिए तुमको बतला रहे हैं मनमना भव। मनमना भव किसको कहते हैं? नंदगांव के करीब में बरसाना या किसी दूसरे गांव में किसी गोपी की शादी हुई, नवेली, नई शादी हुई, कृष्ण का नाम सुना था अपने गांव से ही, नेपीहर से ही, किंतु कृष्ण को देखा नहीं और अपने कानों से कृष्ण की मुरली की आवाज भी नहीं सुनी थी, उसके संबंध में भी सुनी थी। आई और मौका ढूंढने लगी ये कब कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा। कृष्ण गोचारण में जाते हैं सवेरे, अभी बछड़ी को चरा रहे, सब गोपियां अपने घर से खिड़कियों के सामने आकर अपने दरवाजे में कुंजों में छिप करके कृष्ण का दर्शन करने लगी। कृष्ण गोचारण करने के लिए आ रहे, बंसी बजने लगी और सिंगे बजने लग गए। सब लोग निकल करके देखते, नवेली ने भी प्रयत्न किया कि मैं भी जाऊं दरवाजे पर खड़ी होकर के उनको देखूंगी। उसकी सास ने कहा जे मत जाओ, काला सर्प डस देगा और बीच नहीं उतरेगा, मत जाओ। मैं तुम्हारी लड़की किस लिए जा रही, उसको नहीं डसेगा। आप ब्रज की जितनी लड़कियां हैं, लड़के हैं, ये सभी लोग जा रहे हैं और तुम भी जा रही हो और हमको यहां पर बैठा रही हो, तो हम लोग पकी हुई हैं, परिपक्व हो गई, इसलिए विष असर नहीं करेगा। और तुम अभी नवेली है ना? नहीं, इसलिए वो विष ऐसा चढ़ जाएगा कि कभी उतरेगा नहीं। वो बोलेगा जी घर से चाहे निकाल दो, किंतु हम तो जाएंगे ही। और वो निकल करके दरवाजे पर खड़ी हो गई। कृष्ण जानते थे जो मेरे लिए दर्शनों के लिए बड़ी प्यासी है। कृष्ण ने बछड़े का एक पूंछ छू दिया और वो कुत्ता हुआ ठीक वहीं पर आया जहां पर वो खड़ी थी। और कृष्ण वहां आकर अपनी बंसी को उसके छोड़ी में लगा दिया और उसके चित्त को अपने साथ में चुरा करके लेते हुए चले। जब तक धूल उड़ती रही, बछड़े दिखते रहे, कृष्ण देखते रहे, तब तक खड़ी रही। कृष्ण चले गए, धूल भी शांत हो गई, तभी वहीं पर खड़ी। मन तो है नहीं, जाए क्या करे, खड़ी की खड़ी रही। सास आई, अरे जब झोरा खड़ी है ना, कहा ना जो बीस चढ़ जाएगा उतरेगा नहीं, तो तुमको बीस लग गया, चलो मेरे साथ। उसको पकड़ करके घर में ले गई और होश लाने के लिए कहा घर में दही का मटका है, उसे ले और मंथन करो। ये कह करके अपने काम में गई और ये नवेली स्त्री गोपी घर में गई और दही का मटका समझ करके सरसों राई का मटका उठा लाई और राई को ही मथने लगी। थोड़ी देर के बाद में उसकी सास आई, बोली कहा ना विष नहीं उतरेगा, अभी भी नहीं उतरा। अच्छा ठीक है, एक बात करो, ब्रज में गांव से दूर पनघट होता है, कुआं होता है जिसका पानी बिरले का ही मीठा होता है, पानी अधिकांश खारा, तो उसके सिर पर घड़ा रख दिया, उसके पर एक घड़ा और तीन घड़े, और यहां पर भी घड़ा दे दिया, उसके ऊपर में घड़ा, उसके ऊपर में घड़ा, और इधर में एक गोदी में एक बच्चे को थमा दिया, और डोल बाल्टी पानी से कुआं भरने के लिए वो भी उसको दे दी। जाओ, मन तो था नहीं, पूर्व अभ्यास से कुएं पर पंडगढ़ पर पहुंची, घड़ों को रखा नीचे, सब कुछ रख करके बच्चे को भी गोदी से उतार करके पास ही रख दिया, और मन तो था नहीं, उसने रस्सी की फांस लगाई और अपने लड़के के गले में ही लगा दिया, और उसी को ही कुएं में डालेगी। जो गोपियां थी वहां किसी ने, अरे इसको भूत लग गया, आज जो जानने वाली थी, जो कृष्ण का किसका
भूत नहीं,
ये नंद का पुत्र लग गया है? इस प्रकार से बहुत सी हो रही है। फिर गोपियों ने मना किया, उसको फिर पानी में भर करके उसको घर पहुंचा दिया। ये है मनमना भव। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है इसका, एक उदाहरण है गोपियों का ही, जो मन भवा। अर्जुन तो कहते ये तो संभव नहीं, मद भक्त हो हमारे भक्त बन जाओ, नहीं है तो इतना नहीं है, तो ये भी रणयुद्ध में संभव नहीं है, रणभूमि में संभव नहीं। एक बार नमस्कार कर लो हमको, हाँ ये कर सकते, नमस्कार करके और युद्ध करेंगे, ऐसा ही किया। तो कृष्ण उनकी महिमा का वर्णन कर रहे गोपियों की, और दूसरा कोई जगत में उदाहरण नहीं इसका, किंतु यही हमारा लक्ष्य और एम ऑफ द लाइफ है, हमारे जीवन का यही है। कृष्ण के बिना ब्रज की कैसी दशा हो रही है, मन रो लागे ना सखी रे। एक कृष्णदास जी ब्रज का पद गाएंगे,
बोले श्रृंगारेना
सभी लोग आएंगे,
श्याम के
अब कृष्ण से बात करते करते उद्धव जी सोच रहे हैं कृष्ण के बिना मैं ब्रज में जाता रहा हूं और कुछ दिन लग भी सकते हैं, तो कृष्ण के बिना मैं कैसे रह सकूंगा। कृष्ण उनकी बात समझ गए, बोले जी उद्धव मैं तो एक अंश से टुकड़े से यहां हूं, मैं ब्रज ही में रहता हूं, ब्रज के अतिरिक्त और कहीं नहीं रहता। जहां प्रेम मिलता है वही आदमी रहता है, इसलिए मैं संपूर्ण से वहां तुम्हारा उपलब्धि करो। ऐसा कह करके सोने के रथ पर उनको बैठा दिया और घोड़े उसमें चल पड़े। पहुंचते मोहते शाम हो गई। जब तक उद्धव जी का रथ दिखाई पड़ा, कृष्ण वहीं पर खड़े रहे। जब धूली समाप्त हो गई और वो आंखों से उजल हो गए, बड़े विरह में तप्त होकर के कृष्ण मथुरा में लौटे। यहां पर एक विचार है, कृष्ण ने उद्धव को क्यों भेजा? वो जानते हैं मेरे जब तक वहां मैं जब तक वहां पर नहीं पहुंचता, खुद मैं वहां पर स्वयं नहीं जाता, उद्धव के जाने से उनका विरह कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। फिर भी भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? देखो, गोपियों को कृष्ण में के लिए विरह है। कोटि कोटि गोपियां हैं, एक दूसरे से अपना दुख कर करके अपना भार हल्का कर लेती हैं, अपना दुख रोती हैं। ललिता जी राधा जी को सांत्वना दे रही हैं, जब कह गए हैं कि आएंगे तो जरूर आएंगे, झूठे कभी नहीं। दूसरी गोपी और गोपियों को सांत्वना दे रही है, किंतु कृष्ण विरह में तड़प रहे हैं, उनको सांत्वना कौन देगा? है कोई वहां मथुरा में? कोई नहीं है जो उनको सांत्वना दे सके। कृष्ण सोचते हैं कि जहां पर मैंने प्रेम की पाठशाला में प्रेम सीखा है, प्रेम करना सीखा है, उस कॉलेज में उद्धव को भेज दूं, एडमिशन लेकर के वहां जा रहेगा और प्रेम सीखेगा, गोपियों का विरह समझेगा और फिर हमारे पास में आएगा, तब मैं भी अपना दुख दर्द बांटूंगा। अभी तो कोई है ही नहीं बातचीत करने के, इसलिए उद्धव को भेजा। उद्धव कहां गए? गोपियों की पाठशाला में गए। उन्होंने बिल्डिंग को देखा, कॉलेज तो देखा प्रेम का, जिस प्रेम में हेड हैं प्रेसिडेंट या क्या कहते हैं, वो तो है राधिका जी, ललिता विशाखा इत्यादि एक एक विषय के प्रेम के एक एक पहलू पर एक एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। पहुंचे, गोपियों ने परीक्षा ली, ये हमारी पाठशाला में विद्यालय में इनकी एडमिशन लिया जाए कि नहीं। तो पूछा उद्धव, तुम तो कृष्ण के दूत मालूम पड़ते हो, कृष्ण का संग तुमने किया है। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक उपाधि एक निरुपाधि। एक प्रेम में स्वार्थ होता है, दूसरा प्रेम होता है जो स्वार्थी नहीं होता है, देना जानता है। उदाहरण के लिए औपाधिक प्रेम कैसा होता है? जैसा तुम हो भौंरा, एक फूल का रस लेकर के दूसरे फूल पर चला जाता, काम हो गया। रस लेना, मधुपान करना, उसका उसकी आवश्यकता थी, पूरा हो गया तो वो दूसरे पर चला गया। कोई भिखारी है, भीख मांगने के लिए गया और ब्रज में राधे राधे कहा, भिक्षा मिल गई। अब एक सेकंड के लिए बाबा थोड़ा सा रह करके कृष्ण की कथा सुनाओ, दूसरे दिन सुनाऊंगा, आज फुर्सत नहीं है। काम हो गया, भिक्षा मांगना और चला गया। जंगल में फल फूल है, घास है, इसलिए हरिण को प्यारा है, हरिण वहां पर निवास करते हैं, हिरण। और जब उसमें आग लग गई और हरापन दूर हो गया, सूखा हो गया, तो हरिण रहेगी, ये भी स्वार्थ है। जिस प्रकार एक वेश्या प्रेम से मतलब नहीं, रूप गुण से उसका मतलब नहीं, पैसे से मतलब है। जब पैसा मिल गया, वो गरीब हो गया, तो फिर उसको दुत्कार देगी। जात पुरुष भी ऐसा करते हैं, अपना काम हो गया, उसे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, जब उनकी पढ़ाई हो गई खत्म, तो फिर स्कूल में गुरुजी के पास में जाते हैं, गुरुजी आप कैसे हैं, ये पूछेंगे नहीं, समाप्त हो गई। इस प्रकार से स्वार्थ के बहुत से उदाहरण हैं, किंतु हमारा तो कृष्ण के प्रति कोई स्वार्थ था नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। हम तो बिना किसी हेतु के उनकी सेवा करना चाहती थी, और कृष्ण का भी प्रेम हमने देखा, निस्वार्थ प्रेम। अपने किसी स्वार्थ के लिए हमको हम लोगों से प्रीति नहीं की, तो दोनों का प्रेम तो निस्वार्थ था। तो फिर यह प्रेम टूट कैसे गया, बतलाओ, बतला सकते हो क्यों टूट गया? कृष्ण हमें छोड़कर के मधुपुरी चले गए, क्यों? उद्धव जी उत्तर नहीं दे सके, इसलिए एडमिशन नहीं हुआ कॉलेज में। कुछ दिन रहे, गोपियों का बिरह भाव देखा और लौट करके कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण जल्दी से चले, नहीं तो वो मर जाएंगी बिरह गोपियां। मेरे संदेश से तो उनकी बिरहारनी और बढ़ गई, मेरे समर्थ में नहीं, इसलिए उद्धव का एडमिशन नहीं हुआ। गोपियों का ऐसा प्रेम है, इसलिए कृष्ण ने भेजा था। तब आए थे, उनकी गोपियों की कुछ बातें करते थे, इसलिए उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी गए, जाते जाते शाम हो गई, रथ को पासी खड़ा कर दिया। किसी ने बतलाया कि नंद बाबा को जो मथुरा से कोई आया है, उसका नाम उद्धव है। बाबा दौड़े हुए आए, उद्धव को अपने अंक में लगा लिया और उनको घर ले गए। खिलाने के लिए तो कुछ है नहीं, दिन भर का भूखा आया है। किसी ब्राह्मण के घर में खीर पकवा करके मंगवाने की व्यवस्था की, तो उस ब्राह्मण के घर में शायद चीनी भी नहीं थी, इसलिए बिना चीनी की ऐसे ही फीकी वो खीर लाई गई। उद्धव को भूख थी, खाया पिया और जब थोड़ा सा विश्राम कर लिए, तो नंद बाबा जी उनसे बोले, पूछना चाहते हैं ये हमारा लाला कृष्ण कन्हैया कैसा है। किंतु गला भरा था, आंखें छल छला आती, कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं कर पाते। बहुत देर के बाद में अपने हृदय को कठोर करके पूछा, जे हमारा भाई वसुदेव कुशलते भाई अपने पापों के कारण मारा गया, कृष्ण ने नहीं मारा, अपने पापों के कारण मारा गया। देवकी अच्छी है और कहते कहते कृष्ण का स्मरण आया, कुछ नहीं चाहते थे कि मेरा लाला कैसा है, गला रुक हो गया, बोल नहीं सके। उस समय बोले, मैं कृष्ण को भूलने के लिए जमुना के किनारे जाता हूं और वहां पर जमुना के किनारे कृष्ण के चरणों का चिन्ह देकर, पनघट देखकर, यहां पर कृष्ण गोप गोपियों के साथ में तरह तरह की लीलाएं करते थे, गायों को चराते थे, मुझे विरहाग्नि जलाने लगती, धैर्य नहीं रख पाता। फिर मैं घर छोड़ करके बाहर में जाता हूं गोवर्धन की तराई में कृष्ण को भूलने के लिए। वहां प्रत्येक कंदराओं में, प्रत्येक जगहों में कृष्ण की लीला हुई। ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई वृक्ष नहीं जिसके नीचे उन्होंने गैया नहीं चराई और लीलाएं नहीं की, विशेष करके गोवर्धन की कंदराओं में। इसलिए उनके नन्हे नन्हे पैरों को देख करके और उन लीलाओं का स्मरण हो आता है और मैं ठहर हूं। घर आता हूं तो कृष्ण की झिगुली बंसी और ये आंगन में रोना मचलना, दामबंधन लीला, ये सब याद आती है। मैं धैर्य नहीं रख पाता, ये कह करके विरह में मूर्छित हो गया। उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा तो विरह में बड़े दुखी, इनको संतना देने के लिए कृष्ण ने भेजा है, क्या संतना दूं? बृहस्पति के शिष्य और कृष्ण के संगी भी उनको संतना देने के लिए एक भी शब्द उनके पास में नहीं आया। सोच रहे हैं कि नंद बाबा बड़े सौभाग्यवान, बड़े सौभाग्य, पर ब्रह्म को सृष्टि स्थिति करने वालों का भी ईश्वर का ईश्वर, स्वयं आदि और अनादि हैं, और उनको अपना बेटा समझ करके नंद बाबा को इतना अथाह प्रेम। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए एक बूंद भी आंसू आ जाए, उसका जीवन सफल है। और ये विरह में रो रहे हैं इतना, तो मैं कैसे खोजे नंद बाबा चुप रही है, ये तो कह नहीं सकता। यदि कहूं खूब रोई है नंद बाबा तो सांत्वना तो ही नहीं, और मैं क्या कहूं? उद्धव जी जैसे बुद्धिमान लोग, बुद्धि पंडित, कोई शब्द नहीं। आखिरकार में बोले, हो न हो ये बड़े सौभाग्यवान हैं। लेकर जो हो, नंद बाबा और मैया जशोदा, जगत में तुम लोगों को जैसा कोई सौभाग्य नहीं है, सौभाग्यवान नहीं, जिनके प्रेम में डूब करके कृष्ण इनका पुत्र के रूप में आए हैं और उनको साधारण पुत्र मान करके उनको शासन करती है, उनको उखल से बांध देती है। नंद बाबा कहते हैं, अपनी जूती लइयो, कृष्ण को ये लोग दंड देते हैं, किसको? परम विधाता को भी। इसलिए ये सौभाग्यवान है। और कह बोले, ओ देव नंद और जसोदा भैया, आप ही सौभाग्यवान। नंद बाबा जो अब तक मूर्छित जैसे हो रहे थे, उठे, बोले, जो उद्धव तेरे अकल के दांत भी अभी नहीं आए, तुम कृष्ण का मित्र है, मैं समझता था कि तुम बुद्धिमान हो गया है, किंतु तुमको तो अभी अकल नहीं आई, किसको सौभाग्यवान कहते हैं, किसको दुर्भाग्य कहते हैं, तुम अभी तक नहीं समझ सके। यदि जगत में कोई दुर्भागा है तो मैं हूं। तुम कहते हैं जी कृष्ण तुम्हारे परब्रह्म पुत्र हैं, और अब तक तो मैं यही समझ रहा था ये कृष्ण मेरे पुत्र हैं, ये मैं नहीं जानता था ये परम ब्रह्म है, किंतु तुम कह रहे हो। गर्गाचार्य ने भी इसका इंगित दिया था कि कृष्ण परम ब्रह्म, तो मेरा जैसा दुर्भाग्य ऐसा कौन होगा जो हमारे घर में पुत्र जैसे आकर के और हमें छोड़कर के मथुरा चले गए। मैं समझता हूं कि हमारे पास में प्रेम नहीं था, प्रेम का भूखा था वो परमात्मा, हम उसको प्रेम नहीं दे सके, लाड़ प्यार नहीं कर सके, इसलिए आज मथुरा चला गया। मैं तो जानता हूं जगत में मैं पिता कहलाने लायक नहीं, पिता कहलाने लायक का एकमात्र महाराज दशरथ थे, जो राम के बिछोह में हा राम और फिर हा राम नहीं कर सके और प्राणों को छोड़ दिया। अभी तक हमारे प्राण निकल के नहीं रहे कृष्ण के लिए। विधाता ने मेरे हृदय को वज्रसार से बनाया है, महाकठोर है, जो अभी कृष्ण के विरह में मर नहीं जाता था। ये कहते हुए सारी रात ऐसे ही बीत गई और इसी प्रकार के नंद बाबा की जब विरह में मूर्छित हो गए, इधर सवेरा हो गया, वहीं पर कृष्ण कुंड एक है, उद्धव जी स्नान करके अन्ही करने के लिए वहां पर गए और क्या देखा अब इसके बाद बतला। एक कोई कीर्तन
अली मोहिला के
Thank you. Thank you.
अनाउंस करो क्या है कल।
आज सौभाग्य की बात है कि हम पिछले 3 दिनों से गुरु जी से हरि कथा सुन रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, मैं अभी थोड़ा सा सोच रहा था कि जब हम कार्तिक ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, नवदीप परिक्रमा में जाते हैं, तो गुरु जी की जितनी मधुर मधुर कथाएं, जितनी ब्रज की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की, कितना गुण रूप से और कितना सिद्धांत पूर्ण कथा में सुनने को मिलती है जिनका कोई अंत नहीं होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये 2-3 दिनों में क्या क्या गुरु जी खोल रहे, तो मैं इसका मेरे दिमाग से बाहर है। फिर भी गुरु जी कृपा करके इतनी रसपूर्ण कथा कर रहे हैं तो हम सब लोगों का सौभाग्य है। यही सौभाग्य है हम शुद्ध रूप से और शुद्ध वैष्णव से ये हरि कथा सुन रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत बहुत ही दुर्लभ है। यदि आप वास्तविक में इस कथा को सुनना चाहते हैं तो दिन ज्यादा दूर नहीं है। 28 अक्टूबर से हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू हो रही है जो 35 दिन तक चलती है। पूरा जितना जहाँ पर भगवान चौरासी बोध ब्रज है, जितना जहाँ जहाँ पर भी भगवान ने जो जो लीलाएं की है, गुरु जी की कृपा से पूरा विश्व वहां पर सम्मिलित होता है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ जहाँ से लोग भक्त नहीं आते हैं। और मैं ये समझता हूँ हमारा कहीं दुर्भाग्य होता है भारतवासियों का जो वहां पर इतनी सारी जहाँ पूरा विश्व आ जाता है हम लोग वहां पर नहीं पहुंच पाते। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, यदि आप वास्तव की कथाओं को सुनना चाहते हैं जो भूल भूल कथाएं हैं, जैसे गुरु जी ने बताया कृष्ण का जन्म कहाँ होता है, हाँ इतने सारे अभी जो कथाएं सुन रहे थे आप लोग, तो आप जरूर ब्रजमंडल परिक्रमा में आ जाइए। जब पूरा दिन में कथाएं होती है और गुरु जी मान सुबह और शाम को कथाएं करती है, ऐसी रसपूर्ण कथाएं करती है। तो अभी कल गुरु जी और कथा करेंगे, कल हमारा आखिरी दिन है यहाँ पर कथा का जो होगा। तो और एक सूचना है सब लोगों के लिए जिन्होंने पिछले गुरु जी से हरिनाम दीक्षा ले लिया है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो 15 को सुबह 9 बजे जहाँ पर हरि मंदिर में उनका यज्ञ होगा वहां पर यज्ञ संस्कार, और भी जिन्होंने दीक्षा और हरिनाम के लिए आग्रह किया है वो कल 9 बजे सरोवर 206 लक्ष्मी नगर में पहुंचकर जहाँ गुरु जी निवास स्थान है तो वहां पर पहुंचकर 9 बजे वो दीक्षा हरिनाम ले सकते हैं। और यदि कोई किसी को एड्रेस वेड्रेस की मतलब इस प्रोग्राम के बाद मैं यहाँ पर रहूंगा वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और जो दीक्षा लेने वाले लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ली है वो कृपा करके वो अपने बार मंडल करके गुरु जी का बार दीक्षा मंडल देने के लिए आ जाएंगे। धन्यवाद। और एक बात है, इसी बात में मैंने बोला था कि ये पत्रिका हमारे मठ से छपती है, मथुरा मठ से छपती है, जो लगभग पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में जाती है ये पत्रिका। ये पत्रिका ऐसे अद्भुत कथा